मुझे लगता है कि इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। जल्दी ही रश्मि की बात मानकर राधिका और सुमित आकाश उस कमरे से बाहर चले गए थे। अब आगे, उस वक्त वहां अरमान, आस्था और आहान मौजूद थे। अरमान ने आहान की तरफ देखा। इस वक्त आहान एकदम बिखरा बिखरा सा लग रहा था। अरमान आहान को इस हालत में नहीं देख पाया और अरमान तुरंत उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अरमान का साथ पाकर आहान ने तुरंत अरमान को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आहान को इस तरह बच्चों जैसा रोता हुआ देखकर रश्मि और आस्था की भी आंखें भर आई थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि आहान ने जो कुछ किया सिर्फ रौनक की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन उसकी वजह से आहान को कितना रिग्रेट हो रहा था ये बात किसी से छुपी नहीं थी। वह तब जल्दी ही आस्था और रश्मि दोनों उसके पास आ गईं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आहान से कोई बात नहीं की थी। शायद ये बात भी आहान को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी, लेकिन अब आहान को रोता हुआ देखकर रश्मि और आस्था दोनों ने ही उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे शांत करते हुए रश्मि बोली, आहान प्लीज तुम शांत हो जाओ, प्लीज हमें अब रौनक को संभालना है, ये हमारे लिए मुश्किल सिचुएशन है, और अगर तुम भी उसी के जैसा बिहेव करोगे तो फिर कैसा चलेगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और आई एम सॉरी कि हमने तुम्हें पहले इस चीज़ के लिए नहीं बोला, लेकिन तुमने जो कुछ किया मेरी रौनक की जान बचाने के लिए किया है और इसके लिए मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बोलकर रश्मि भी रोने लगी थी। वहीं आस्था ने भी उदासी भरी आवाज़ से बोला, हाँ आहान भैया, रश्मि दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको गलत नहीं समझ रहे हैं, हम बस रौनक की हालत को लेकर परेशान हैं, प्लीज़ आहान भैया अपने आप को संभालिए। अरमान ने आहान को कुछ नहीं बोला था, सिर्फ उसके सर पर दो बार हाथ फेरा और फिर उसे खुद से अलग करके अपने कमरे में चला गया। आस्था जानती थी कि अरमान इमोशनली कितना वीक है, इसलिए आस्था अरमान को संभालने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। वहीं आहान ने रश्मि की ओर देखा। रश्मि ने भी आहान को तुरंत गले लगाया और उसे शांत करने लगी और अपना पन जताते हुए बोली, अगर मेरी छोटी मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो आहान, मैंने तुम्हें हमेशा से ही अपने छोटे भाई की तरह ही देखा है। ऐसे बोलकर रश्मि आहान को शांत करने लगी और थोड़ी देर में आहान शांत भी हो गया और अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोला, मैं थोड़ी देर रौनक के साथ बैठना चाहता हूँ। तब रश्मि ने अपनी आंखों के इशारे से उसे परमिशन दे दी और उस कमरे से बाहर निकल गईं। तब आहान कितनी ही देर तक रौनक के पास बैठा रहा और उसके चेहरे को देखता रहा, और अचानक रौनक का हाथ पकड़कर आहान ने उससे माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और गिल्टी टोन में बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो हवा हवाई, मेरा इरादा तुम्हारे साथ ये सब कुछ बिल्कुल करने का नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ प्लीज़ तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे शायद प्यार भी करता हूँ। ये बोलकर कुछ देर बाद आहान वहाँ से बाहर निकल गया। आहान के तुरंत जाने के बाद रौनक ने अपनी आंखें खोलनी। रौनक ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं उसके कानों में अभी भी आहान की कही हुई बातें गूंज रही थीं। रौनक एकदम इमोशनल थी, फिर भी रौनक ने खुद को संभाला। रौनक अकेली अपना जीवन जीती हुई आई थी, उसने आज तक कभी भी हार नहीं मानी थी, और आज अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भला रौनक कैसे हार मान सकती थी। हालांकि इस बात को डाइजेस्ट कर पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन कितनी ही देर तक रौनक अपने आप को आईने में देखती रही। उसका शरीर इस बात की गवाही दे रहा था कि आहान ने किस हद तक जाकर उसे प्यार किया था। उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर मार्क्स के निशान ना हो। रौनक को खुद को आईने में देखकर खुद से ही घिन भी आ रही थी और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, और अपना सारा गुस्सा और झुंझलाहट वो सीधे सीधे तरीके से अब आहान पर उतारना चाहती थी। इसके लिए रौनक ने जल्दी ही चेंज किया और फुल स्लीव्स कपड़े पहन लिए। उसने आज घुटनों तक का टॉप पहना था। हालांकि रौनक बिल्कुल लड़कों जैसे एकदम स्टाइलिश रहा करती थी, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। वहीं दूसरी ओर सभी इस वक्त रौनक के इस तरह के बर्ताव को लेकर परेशान हो रहे थे। नानी माँ सबको समझा रही थी, बेटा किसी भी लड़की के लिए इस तरह की सिचुएशन बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इस वक्त तुम सबको मिलकर रौनक को संभालना होगा, रौनक को इस वक्त सहारे की बहुत ज़रूरत है, अगर रौनक इसी तरह का बर्ताव करती रही तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। अभी नानी माँ सबको समझा ही रही थी कि तभी अचानक रौनक वहाँ आ गई थी। रौनक को देखकर सबके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। वहीं रश्मि ने तुरंत खड़े होकर रौनक को गले लगा लिया था। उसके गाल को छूते हुए बोली, तू ठीक है ना। तब रौनक ने रश्मि को कोई जवाब नहीं दिया और बिना किसी इमोशन के आहान की ओर देखकर बोली, मिस्टर आहान सिंघानिया, मुझे तुमसे बात करनी है। अब जैसे ही रौनक ने ये कहा, सब लोग हैरानी से आंखें फाड़कर कभी रौनक को देख रहे थे तो कभी आहान को देख रहे थे। आहान ने भी एक नजर सबकी ओर देखा और फिर चुपचाप सर झुकाकर रौनक के पीछे पीछे जाने लगा। वहीं कमरे में जाकर रौनक ने दरवाजा पटक दिया और आहान की ओर देखकर बोली, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इस हद तक दरिंदगी करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? हाँ, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा बोलकर रौनक आहान पर चीख रही थी, क्योंकि रौनक को तो ये लग रहा था कि आहान ने नशे में उसका फायदा उठाया है। अभी तक रौनक को इस बात के बारे में नहीं पता था कि उसे किस तरह का ड्रग्स दिया गया था जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, और आहान ने तो सिर्फ उसकी जान बचाई थी। तब रौनक का इस तरह से इल्जाम लगाना आहान को और भी ज्यादा इमोशनल कर गया और उसकी आंखें भर आईं और वो बोला, देखो रौनक, मैं जानता हूं कि जो कुछ मैंने किया वो बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। बिना किसी लड़की की मर्जी के मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब करना जरूरी था। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, रौनक की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थी, और अचानक थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने खींचकर एक थप्पड़ आहान के मुंह पर मारा और उसके बाद एक और थप्पड़ आहान के मुंह पर मारा और उसके गिरिबान को पकड़कर उसकी आंखों में लेखते हुए बोली, अच्छा, मेरे साथ इस तरह से इतनी दरिंदगी करके तुम मेरी जान बचाने का नाम दे रहे हो? हाँ, जानना चाहते हो तुमने क्या किया मेरे साथ? जानना चाहते हो, देखना चाहते हो? रुको, ऐसे बोलकर रौनक ने अपने पूरे टॉप के जिप खोल दिए थे और अब वो केवल इनर वियर में आहान के सामने थी, और आहान आंखें फाड़कर रौनक को देखने लगा था, क्योंकि उसके नेक के निचले हिस्से साथ ही साथ उसके पेट वाले एरिया के हर एक हिस्से पर आहान के दांतों के बाइट के निशान मौजूद थे। अब जैसे ही आहान ने ये देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गिल्टी टोन में बोला, प्लीज स्टॉप इट और बंद करो अपनी जिप। ऐसा बोलकर रौनक को जिप बंद करने की रिक्वेस्ट करने लगा। तब रौनक बोली, क्यों, क्या हुआ? शर्मा रही है देखकर? हाँ, शर्मा रही है तुम्हें देखकर तुम्हें, लेकिन ये सब करते हुए तो शर्म नहीं आई। तुम्हें क्या लगा कि रौनक एक लड़की है? अगर इस लड़की के साथ इस तरह की हरकत करोगे या ये सब कुछ करोगे तो क्या मैं रोते पीटते अपनी जिंदगी गुजार दूंगी? हाँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है आहान सिंघानिया। मैंने जिंदगी को करीब से जिया है, बहुत करीब से। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत करोगे और उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी?
मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी माफ नहीं करूंगी आहान सिंघानिया, कभी भी नहीं। और क्या बोला तुमने, तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ इन योर ड्रीम्स, क्योंकि रौनक को तुम कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। ऐसा बोलकर रौनक आहान पर आग उगलने लगी थी। वहीं आहान का पारा बढ़ गया था और रौनक जैसे ही जाने लगी, तब आहान उसकी बाजू को कसकर पकड़कर बोला, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। हाँ, मैंने कहा ना, मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि ये करना उस वक्त बहुत जरूरी था। तुम जानती हो तुम्हें कौन सा ड्रग्स दिया गया था? ऐसा बोलकर आहान ने अपनी ही भाषा में उस ड्रग्स का नाम बताना शुरू कर दिया था। रौनक मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और वो अच्छी तरह से उस ड्रग्स के बारे में जानती थी कि उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते थे और वो ड्रग्स इंसान को किस हद तक मजबूर कर सकता था। एक पल को आहन की बात सुनकर रौनक को सांप सूंघ गया था। तभी आहन ने रौनक की ओर देखकर कहा, तुमने अपने निशान तो दिखा दिए, एक चीज देखना चाहोगी तुम? ऐसा बोलकर आहन ने जल्दी ही अपनी शर्ट उतार दी और बिल्कुल लोअर में वो बिल्कुल न्यूड होकर रौनक के सामने खड़ा हुआ था। अब तो आहन के बदन को देखकर रौनक की तो चीख निकलते निकलते रह गई थी, क्योंकि आहन की गर्दन के नीचे का सारा हिस्सा, उसके चेस्ट, उसकी मस्क्यूलर बाइसेप्स, उसके सिक्स पैक्स, हर जगह रौनक के बाइट्स के निशान थे। इतना ही नहीं, रौनक के शरीर पर तो काफी कम निशान थे, उससे 10 गुना ज्यादा निशान आहन के शरीर पर इस वक्त मौजूद थे। अब तो रौनक की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सारे निशान उसने आहन को दिए हैं। तब रौनक जल्दी ही मुंह फिर कर खड़ी हो गई थी। तब आहन अपनी शर्ट को मुस्कुराते हुए पहनने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, अब शर्म आ रही है मेरे निशानों को देखकर? हाँ, क्या तुम्हें तब शर्म नहीं आई जब तुम मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रही थी, किसी लड़के की इज्जत लूटते हुए? तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आई? हाँ, एक तो तुमने मुझसे मेरी वर्जिनिटी चुरा ली और ऊपर से तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। और एक और बात कान खोलकर सुन लो, जो मैंने कहा था वो मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, रौनक आहन सिंघानिया। और मेरा नाम क्या अब तुम पर मोहर भी लग चुकी है, तो चुपचाप खुशी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। ऐसा बोलकर आहन अचानक रौनक के गालों को चूमकर वहां से चला गया था, और रौनक हैरानी से जिस जगह आहन ने उसे चुम्मा था उस जगह पर हाथ रखकर उसे और देखने लगी थी और फिर नफरत से बोली, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वहीं आहन जल्दी ही अब नीचे सबके पास आ गया था। उस वक्त सबके सब उदास बैठे हुए थे। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि रौनक अब चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, या फिर इस वक्त रौनक काफी ज्यादा दुखी होगी और आहन पर गुस्सा कर रही होगी। लेकिन जैसे ही आहन एकदम शांत चेहरे के साथ वहां आया और वहां आकर थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, राजेश बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ, मुझे नाश्ता करना है, मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आओ। अब जैसे ही आहन ने इतना नॉर्मल बर्ताव किया, सबके सब हैरान हो गए थे और सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि जब से आहन ने रौनक के साथ इंटीमेट हुआ था तब से आहन की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी थी और उसे रह रहकर काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, गिल्ट हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह से रौनक ने उसके साथ नॉर्मल बर्ताव किया, साथ ही साथ रौनक ने उस पर चांटे मारे, तो उसकी झिझक, उसका रिग्रेट सब कुछ निकल चुका था और आहन अब थोड़ा शांत हो गया था। तभी रौनक भी आहन के पीछे पीछे नीचे आ गई थी।